सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति अनुक्रमणिका 1. मानव जीवन विचारों का प्रतिबिंब 2. विचार शक्ति सर्वोपरि है 3. सभी मानसिक स्फुरणाएं विचार नहीं 4. विचारों का महत्व और प्रभुत्व 5. विकास और शोध का श्रेय विचार को 6. अद्भुत उपलब्धियों का आधार 7. दिव्य विचारों से उत्कृष्ट जीवन 8. विचारों का व्यक्तित्व एवं चरित्र पर प्रभाव 9. विचारशील लोग दीर्घायु होते हैं 10. प्रसन्नता का वास्तविक स्वरूप 11. विचार ही चरित्र निर्माण करते हैं 12. श्रेष्ठ व्यक्ति के आधार सद्विचार 13. विचार शक्ति सदा अमोघ 14. सर्वश्रेष्ठ साधना 15. सद्विचारों का निर्माण सत अध्ययन सत्संग से किसी भी शक्ति का उपयोग रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक दोनों की रास्तों से होता है। इसी तरह विचारों की शक्ति भी है, उसको पुरोगामी होने से मनुष्य के उज्ज्वल भविष्य का द्वार खुल जाता है और प्रतिगामी होने पर वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। अधोगामी विचार मन को चंचल, क्षुब्ध, असंतुलित बनाते हैं, जबकि सद्विचारों में डूबे हुए मनुष्य को धरती स्वर्ग जैसी लगती है। मानव जीवन विचारों का प्रतिबिंब। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायवीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता बिगड़ता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो हीन विचार मनुष्य को गिराएंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के कारण। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा मसीह ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। प्रसिद्ध अमरीकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है, जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर से विचारों की शक्ति और उसके असाधारण महत्व को स्वीकार किया है। संक्षेप में, जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं विचारों की प्रेरणा से ही करते हैं। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचारों का प्रतिबिंब ही है। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक, किसी के लिए संसार अशांति, क्लेश, पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न उपवन। एक सी परिस्थितियों में, एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा, प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा, क्रोध, क्लेश में जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाई का अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यंत्रणा समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है। दूसरों को कोसता है महज अपने विचारों के ही कारण। प्राचीन ऋषि मुनि आरण्यक जीवन बिताकर, कंदमूल खाकर भी संतुष्ट और सुखी जीवन बिताते थे और धरती पर स्वर्गीय अनुभूति में मग्न रहते थे। एक और आज का मानव है जो पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक क्लेश, अशांति, दुख, उद्विग्नता से परेशान है। यह मनुष्य के विचार चिंतन का ही परिणाम है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक स्वट अपने प्रत्येक जन्मदिन में काले और भद्दे कपड़े पहनकर शोक मनाया करते थे। वह कहते थे, अच्छा होता यह जीवन मुझे न मिलता, मैं दुनिया में न आता। इसके ठीक विपरीत अंधे कवि मिल्टन कहा करते थे, भगवान का शुक्रिया है जिसने मुझे जीने का अमूल्य वरदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अफसोस है कि मैंने जीवन का एक सप्ताह भी सुख शांतिपूर्वक नहीं बिताया। जबकि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश आदि की कोई कमी नहीं रही। सिकंदर महान भी अपने अंतिम जीवन में पश्चाताप करता हुआ ही मरा। जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता अथवा दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार हैं, अन्य कोई नहीं। समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न जीवन में भी व्यक्ति गलत विचारों के कारण दुखी रहेगा और उत्कृष्ट विचारों से अभावग्रस्त जीवन में भी सुख शांति प्रसन्नता का अनुभव करेगा, यह एक सुनिश्चित तथ्य है। संसार एक शीशा है, इस पर हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। विचारों के आधार पर ही संसार सुखमय अनुभव होता है। पुरोगामी उत्कृष्ट उत्तम विचार जीवन को ऊपर उठाते हैं, उन्नति, सफलता, महानता का पथ प्रशस्त करते हैं, तो हीन, निम्नगामी, कुत्सित विचार जीवन को गिराते हैं। विचारों में अपार शक्ति है, जो सदैव कर्म की प्रेरणा देती है। वह अच्छे कार्यों में लग जाए तो अच्छे और बुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाए तो बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। विचारों में एक प्रकार की चेतना शक्ति होती है। किसी भी प्रकार के विचारों में एक स्थान पर केंद्रित होते रहने पर उनकी सूक्ष्म चेतन शक्ति घनीभूत होती जाती है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से पैदा होता है। बुद्धि उसका आकार प्रकार निर्धारित करती है तो आत्मा उसमें चेतना फूंकती है। इस तरह विचार अपने आप में एक सजीव किंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की सजीव तरंगे हैं जो जीवन संसार और यहाँ के पदार्थों को प्रेरणा देती रहती है। इन सजीव विचारों का जब केंद्रीयकरण हो जाता है तो एक प्रचंड शक्ति का उद्भव होता है। स्वामी विवेकानंद ने विचारों की इस शक्ति का उल्लेख करते हुए बताया है, कोई व्यक्ति भले ही किसी गुफा में जाकर विचार करे और विचार करते करते ही वह मर भी जाए तो वे विचार कुछ समय उपरांत गुफा की दीवारों का विच्छेद कर बाहर निकल पड़ेंगे और सर्वत्र फैल जाएंगे। वे विचार तब सबको प्रभावित करेंगे। मनुष्य जैसे विचार करता है, उनकी सूक्ष्म तरंगे विश्वाकाश में फैल जाती हैं। सम स्वभाव के पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस नियम के अनुसार उन विचारों के अनुकूल दूसरे विचार आकर्षित होते हैं और व्यक्ति को वैसे ही प्रेरणा देते हैं। एक ही तरह के विचार घनीभूत होते रहने पर प्रचंड शक्ति धारण कर लेते हैं और मनुष्य के जीवन में जादू की तरह प्रकाश डालते हैं। विचार शक्ति सर्वोपरि है। यूं संसार में शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक बहुत सी शक्तियां विद्यमान हैं। किंतु इन सब शक्तियों से भी बढ़कर एक शक्ति है जिसे विचार शक्ति कहते हैं। वह सर्वोपरि है। उसका एक मोटा सा कारण तो यह है कि विचार शक्ति निराकार और सूक्ष्मातिसूक्ष्म होती है और अन्य शक्तियां स्थूलतर। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में अनेक गुना शक्ति अधिक होती है। पानी की अपेक्षा वाष्प और उससे उत्पन्न होने वाली बिजली बहुत शक्तिशाली होती है। जो वस्तु स्थूल से सूक्ष्म की ओर जितनी बढ़ती जाती है, उसकी शक्ति भी उसी अनुपात से बढ़ती जाती है। मनुष्य जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण शरीर, कारण शरीर से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की ओर ज्यों ज्यों बढ़ता है, उसकी शक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। यहाँ तक कि अंतिम कोटि में पहुंचकर वह सर्वशक्तिमान बन जाता है। विचार सूक्ष्म होने के कारण संसार के अन्य किसी भी साधन से अधिक शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण के लिए हम विभिन्न धर्मों के पौराणिक आख्यानों की ओर जा सकते हैं। बहुत बार किसी ऋषि, मुनि और महात्मा ने अपने शाप और वरदान द्वारा अनेक मनुष्यों का जीवन बदल दिया। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने न जाने कितने अपंगों, रोगियों और मरणासन व्यक्तियों को पूरी तरह केवल आशीर्वाद देकर ही भला चंगा कर दिया। विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने अपनी विचार एवं संकल्प शक्ति से दूसरे संसार की रचना ही प्रारंभ कर दी थी और इस विश्व ब्रह्मांड की जिसमें हम रह रहे हैं रचना भी ईश्वर के विचार स्फुरण का ही परिणाम है। ईश्वर के मन में बहुस्यामी का विचार आते ही यह सारी जड़ चेतन में सृष्टि बनकर तैयार हो गई और आज भी वह उसकी विचार धारणा के आधार पर ही स्थिति है और प्रलयकाल में विचार निर्धारण के आधार पर ही उसी ईश्वर में लीन हो जाएगी। विचारों में सृजनात्मक और ध्वंसात्मक दोनों प्रकार की अपूर्व, सर्वोपरि और अनंत शक्ति होती है। जो इस रहस्य को जान जाता है वह मानव जीवन के एक गहरे रहस्य को प्राप्त कर लेता है। विचारणाओं का चयन करना स्थूल मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उनकी पहचान के साथ जिसको उसके प्रयोग की विधि विदित हो जाती है वह संसार का कोई भी अभीष्ट सरलतापूर्वक पा सकता है। संसार की प्रायः सभी शक्तियां जड़ होती हैं। विचार शक्ति चेतन शक्ति है। उदाहरण के लिए धन अथवा जन शक्ति ले लीजिए। अपार धन उपस्थित हो किंतु समुचित प्रयोग करने वाला कोई विचारवान व्यक्ति न हो तो उस धनराशि से कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जन शक्ति और सैनिक शक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब कोई विचारवान नेता अथवा नायक उसका ठीक से नियंत्रण और अनुशासन कर उसे उचित दिशा में लगाता है, तभी वह कुछ उपयोगी हो पाती है, अन्यथा वह सारी शक्ति भेड़ों के गले के समान निरर्थक रहती है। शासन, प्रशासन और व्यवसायिक सारे काम एकमात्र विचार द्वारा ही नियंत्रित और संचालित होते हैं। भौतिक क्षेत्र में ही नहीं, उससे आगे बढ़कर आत्मिक क्षेत्र में भी एक विचार शक्ति ही ऐसी है जो काम आती है। न शारीरिक और न सांपत्तिक कोई अन्य शक्ति काम नहीं आती। इस प्रकार जीवन तथा जीवन के हर क्षेत्र में केवल विचार शक्ति का ही साम्राज्य रहता है। सभी मानसिक स्फुरनाएं विचार नहीं, किंतु मनुष्य की सभी मानसिक तथा बौद्धिक स्फुरनाएं विचार ही नहीं होते। उनसे से कुछ विचार और कुछ मनोविकार तथा बौद्धिक विलास भी होता है। दुष्टता, अपराध तथा ईर्ष्या द्वेष के मनोभाव, विकार तथा मनोरंजन, हास विलास तथा क्रीड़ा आदि की स्फुरनाएं बौद्धिक विलास मानी गई है। केवल मानसिक स्फुरनाएं ही विचारणीय होती हैं, जिनके पीछे किसी सृजन, किसी उपकार अथवा किसी उन्नति की प्रेरणा क्रियाशील रहती है। साधारण तथा सामान्य गतिविधि के संकल्प विकल्प अथवा मानसिक प्रेरणाएं विचार की कोटि में नहीं आती हैं। वे तो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं, जो मस्तिष्क में निरंतर आती रहती हैं। यूं तो सामान्यतया विचारों में कोई विशेष स्थायित्व नहीं होता, वे जल तरंगों की भांति मानस में उठते और विलीन होते रहते हैं। दिन में न जाने कितने विचार मानव मस्तिष्क में उठते और मिटते रहते हैं। चेतन होने के कारण मानव मस्तिष्क की यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। विचार वे ही स्थायी बनते हैं, जिनसे मनुष्य का रागात्मक संबंध हो जाता है। बहुत से विचारों में से एक दो विचार ऐसे होते हैं जो मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। वह उन्हें छोड़ने की बात तो दूर, उनको छोड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकता। यही नहीं, किसी विचार अथवा विचारों के प्रति मनुष्य का रागात्मक झुकाव विचार को न केवल स्थायी अपितु अधिक प्रखर तेजस्वी बना देता है। इन विचारों की छाप मनुष्य के व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व पर गहराई के साथ पड़ती है। रागात्मक विचार निरंतर मथित अथवा चिंतित होकर इतने दृढ़ और अपरिवर्तनशील हो जाते हैं कि वे मनुष्य के विषय व्यक्तित्व के अभिन्न अंग की भांति दूर से ही झलकने लगते हैं। प्रत्येक विचार जो इस संबंध में साकार बन जाता है, वह उसकी क्रियाओं में अनायास ही अभिव्यक्त होने लगता है। अतएव आवश्यक है कि किसी विचार से रचनात्मक संबंध स्थापित करने से पूर्व इस बात की पूरी परख कर लेनी चाहिए कि जिसे हम विचार समझकर अपने व्यक्तित्व का अंग बनाए ले रहे हैं, वह वास्तव में विचार है भी या नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि वह आपका कोई मनोविकार हो और तब आपका व्यक्तित्व उसके कारण दोषपूर्ण बन जाए। प्रत्येक शुभ तथा सृजनात्मक विचार व्यक्तित्व को उभारने और विकसित करने वाला होता है, और प्रत्येक अशुभ तथा ध्वंसात्मक विचार मनुष्य का जीवन गिरा देने वाला है। किसी भी शक्ति का उपयोग रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक दोनों ही रास्तों से होता है। विज्ञान की शक्ति से मनुष्य के जीवन में असाधारण परिवर्तन हुआ। असंभव को संभव बनाया विज्ञान ने, किंतु आज विज्ञान के विनाशकारी स्वरूप को देखकर मानवता का भविष्य ही अंधकार में दिखाई देता है। जनमानस में बहुत बड़ा भय व्याप्त है। ठीक इसी तरह विचारों की शक्ति भी है। उनके पुरोगामी होने से मनुष्य के उज्ज्वल भविष्य का द्वार खुल जाता है, और प्रतिगामी होने पर वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। गीताकार ने इसी सत्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। विचारों का केंद्र मन ही मनुष्य का बिंदु है और वही शत्रु भी। आवश्यकता इस बात की है कि विचारों को निम्न भूमि से हटाकर उन्हें ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, जिससे मनुष्य दीनहीन, क्लेश एवं दुखों से भरे नारकीय जीवन से छुटकारा पाकर इसी धरती पर स्वर्गीय जीवन का उपाय कर सके। वस्तुतः सद्विचार ही स्वर्ग की और कुविचार ही नरक की एक परिभाषा है। अधोगामी विचार मन को चंचल, क्षुब्ध, असंतुलित बनाते हैं, उन्हीं के अनुसार दुष्कर्म होने लगते हैं और उन्हीं में फंसा हुआ व्यक्ति नारकीय यंत्रणाओं का अनुभव करता है। जबकि सद्विचारों में डूबे हुए मनुष्य को धरती स्वर्ग जैसी लगती है। विपरीतताओं में भी वह सनातन सत्य के आनंद का अनुभव करता है। साधन संपत्ति के अभाव, जीवन के कटु क्षणों में भी वह स्थिर और शांत रहता है। शुद्ध विचारों के अवलंबन से ही सच्चा सुख मिलता है। विचारों का महत्व और प्रभुत्व। शुभ हो या अशुभ, मनुष्य के हर विचार का एक निश्चित मूल्य तथा प्रभाव होता है। यह बात रसायन शास्त्र के नियमों की तरह प्रामाणिक है। सफलता असफलता, संपर्क में आने वाले, दूसरे लोगों से मिलने वाले सुख दुख का आधार विचार ही माने गए हैं। विचारों को जिस दिशा में उन्मुख किया जाता है, उस दिशा के तदनुकूल तत्व आकर्षित होकर मानव मस्तिष्क में एकत्रित हो जाते हैं। सारी सृष्टि में एक सर्वव्यापी जीवन तरंग आंदोलित हो रही है। प्रत्येक मनुष्य के विचार उस तरंग में सब ओर प्रवाहित होते रहते हैं, जो उस तरंग के समान ही सदाजीवी होते हैं। वह एक तरंग ही समस्त प्राणियों के बीच से होती हुई बहती है। जिस मनुष्य की विचारधारा जिस प्रकार ही होती है, जीवन तरंग में मिले वैसे विचार उसके साथ उसके मानस में निवास बना लेते हैं। मनुष्य का दूषित अथवा निर्दोष विचार सर्वव्यापी जीवन तरंग से अपने अनुरूप अन्य विचारों को आकर्षित कर उन्हें अपने साथ बसा लेगा और इस प्रकार अपनी जाति की वृद्धि कर लेगा। मनुष्य का समस्त जीवन उसके विचारों के सांचे में ही ढलता है। सारा जीवन आंतरिक विचारों के अनुसार ही प्रकट होता है। कारण के अनुरूप कार्य के नियम के समान ही प्रकृति का यह निश्चित नियम है कि मनुष्य जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर। मनुष्य के भीतर की उच्च अथवा निम्न स्थिति का बहुत कुछ परिचय उसके बाह्य स्वरूप को देखकर पाया जा सकता है। जिसके शरीर पर अस्त व्यस्त फटे चिथड़े और गंदगी दिखलाई दे, समझ लीजिए कि यह मलिन विचारों वाला व्यक्ति है। इसके मन में पहले से ही अस्त व्यस्तता जड़ जमाए बैठी है। विचार सूत्र से ही आंतरिक और बाह्य जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है। विचार जितने परिष्कृत उज्ज्वल और दिव्य होंगे, अंतर भी उतना ही उज्ज्वल तथा दैवी संपदाओं से आलोकित होगा। वही प्रकाश स्कूल कार्यों में प्रकट होगा। जिस कलाकार अथवा साहित्यकार की भावनाएं जितनी ही प्रखर और उच्च कोटि की होगी, उनकी रचना भी उतनी ही उच्च और उत्तम कोटि की होगी। जिस तरह के हमारे विचार होंगे, उसी तरह की हमारी सारी क्रियाएं होंगी और तदनुकूल ही उनका अच्छा बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। विचारों के पश्चात ही हमारे मन में किसी वस्तु या परिस्थिति की चाह उत्पन्न होती है और तब हम उस दिशा में प्रयत्न करने लगते हैं। जितनी हम सच्चे दिल से चाह करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए अंतःकरण से अभिलाषा करते हैं, उस पर यदि दृढ़ निश्चय के साथ कार्य किया जाए तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति अवश्यंभावी है। जिस आदर्श को हमने सच्चे हृदय से अपनाया है, यदि उस पर मनसा वाचा से चलने को हम कटिबद्ध हैं तो हमारी सफलता निस्संदेह है। जब हम विचार द्वारा किसी वस्तु या परिस्थिति का चित्र मन पर अंकित कर उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो उस पर दृढ़ निश्चय के साथ हमारा संबंध जुड़ना आरंभ हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हम दीर्घकाल तक नवयुवा बने रहें, तो हमें चाहिए कि हम सदा अपने मन को यौवन के सुखद विचारों के आनंद सागर में लहराते रहें। यदि हम चाहते हैं कि हम सदा सुंदर बने रहें, हमारे मुखमंडल पर सौंदर्य का दिव्य प्रकाश हमेशा झलका करे, तो हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा को सौंदर्य के सुंदर सरोवर में नित्य स्नान कराते रहें। यदि आपको संसार में महापुरुष बनकर यश प्राप्त करना है, तो आप जिस महापुरुष के सदृश होने की अभिलाषा रखते हैं, उनका आदर्श सदा अपने सामने रखें। आप अपने मन में यह दृढ़ विश्वास जमा लें कि आप में अपने आदर्श की पूर्णता और कार्य संपादन शक्ति पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आप अपने मन से सब प्रकार की हीन भावना को हटा दें और मन में कभी निर्बलता, न्यूनता, असमर्थता और असफलता के विचारों को न आने दें। आप अपने आदर्श की पूर्ति हेतु मन, वचन, कर्म से पूर्ण दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न करें और विश्वास रखें कि आपके प्रयत्न अंततः सफल होकर रहेंगे। कुएं में मुंह करके आवाज देने पर वैसी ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। संसार भी इस कुएं की आवाज की तरह ही है। मनुष्य जैसा सोचता है, विचारता है, वैसी ही प्रतिक्रिया वातावरण में होती है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही उसके आसपास का वातावरण बन जाता है। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं, जो अपने समांधर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक ही तरह के विचारों के घनीभूत होने पर वैसी ही क्रिया होती है और वैसे ही स्थूल परिणाम प्राप्त होते हैं। विचार की प्रचंड शक्ति असीम, अमर्यादित, अनुशक्ति से भी प्रबल है। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं प्रकृति अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव, रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचार की प्रचुरता होगी, वहाँ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों के हिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहां घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहां नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दीनहीन हूँ, उसका अपकर्ष कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरवयुक्त विचार होंगे, तो प्रगति उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति का उपयोग ही व्यक्ति को सर्वतोमुखी सफलता प्रदान करता है। विकास और शोध का श्रेय विचार को। मनुष्य विचार शक्ति को जिस दिशा में प्रयुक्त करता है, उधर ही आशाजनक सफलता उपलब्ध होने लगती है। चिंतन की शोध द्वारा अनेकों प्रकार की रहस्यमय प्राकृतिक शक्तियों को जानने और उनको विश्ववर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की गई है। इस शोध कार्य में सारा श्रेय मानव विचार शक्ति का ही है। ये प्राकृतिक शक्तियां तो अनादि काल से इस सृष्टि में मौजूद थी, पर उनको उपलब्ध कर सकना तभी संभव हुआ जब विचार शक्ति की दौड़ उनके शोध तक पहुंची। विचार शक्ति के विशाल क्षेत्र के द्वारा ही वाणी, भाषा, लिपि, संगीत, अग्नि का उपयोग, कृषि, पशुपालन, जलतरण, वस्त्र निर्माण, धातु प्रयोग, मकान बनाने, संगठित रहने, सामूहिक सुविधा की धर्म संहिता पर चलने, रोगों की चिकित्सा करने जैसे अनेकों महत्वपूर्ण आविष्कार मनुष्य ने जब तक किए और उनके द्वारा अपनी स्थिति को देवोपम बनाया। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अत्यधिक विभूतिवान है। हम देवताओं के सुखों के बारे में सोचते हैं कि मनुष्य की अपेक्षा उन्हें असंख्य गुणसुद्ध साधन प्राप्त हैं। धरती के प्राणी भी यदि यह सोच सके कि उनमें और मनुष्य की सुविधाओं में कितना अंतर है, तो हम उनसे कहीं अधिक सुख सुविधा से संपन्न होंगे जितना कि हम अपनी तुलना में देवताओं को मानते हैं। यह देवोपम स्थिति हमने विचारशील की विशेषता के कारण, उसके विकास और प्रयोग के कारण ही उपलब्ध की है। पुष्ट विचार शक्ति को जीवन की जिस दिशा में जितनी मात्रा में लगाना प्रारंभ कर दिया है, हमें उस दिशा में उतनी ही सफलता मिलने लगती है। विज्ञान की शोध, अस्त्रशास्त्र की सुसज्जा, उत्पादन, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा आदि जिन कार्यों में भी हमारा ध्यान लगा हुआ है, उनमें तीव्र गति से प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है, और यदि ध्यान इन काल में केंद्रीभूत हो, इसी प्रकार लगा रहा हो, तो भविष्य में उस ओर उन्नति भी आशाजनक होगी, निश्चित है। पिछले दिनों में अपनी आकांक्षा को सुव्यवस्थित रूप में केंद्रीभूत करके रूस और अमेरिका बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारी आकांक्षा एवं विचारधारा अपने लक्ष्य पर जहां भी तन्मयता से संलग्न रहेगी, वहां सफलता की उपलब्धि असंदिग्ध है। विचार शक्ति को एक जीवित जादू कहा जा सकता है। उसके स्पष्ट होने से निर्जीव मिट्टी नयनाभिराम खिलौने के रूप में और प्राणघातक विष जीवनदाय रसायन के रूप से बदल जाता है। हम दिन भर सोचते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं को समझने और हल करने में अपनी विचार शक्ति को लगाते हैं। ईश्वर ने मस्तिष्क रूपी ऐसा देवता इस शरीर में टिका दिया है जो हमारी आकांक्षा की पूर्ति में निरंतर सहायता करता रहता है। इस देवता से जो हम मांगते हैं, वह उसे करने की व्यवस्था कर देता है। विचार शक्ति इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कामधेनु और कल्पलता कह सकते हैं। प्रगति के पथ पर महान संबल के आधार पर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। यह शक्ति यदि जीवन में उपस्थित उलझनों का स्वरूप समझने और उसका निराकरण करने में लगे, तो निसंदेह उसका भी हल निकल सकता है। विक्षोभ की परिस्थिति को बदलने का मार्ग रचनात्मक विचारों से ही मिलता है। विचारों की रचना प्रचंड शक्ति है। जो कुछ मन सोचता है, बुद्धि उसे प्राप्त करने में, उसके जुटाने में लग जाती है। धीरे धीरे वैसी ही परिस्थिति सामने आने लगती है, दूसरे लोगों का वैसा ही सहयोग भी मिलने लगता है, और धीरे धीरे वैसा ही वातावरण बन जाता है जैसा कि मन में विचार प्रवाह उठा करता है। भय, चिंता और निराशा में डूबे रहने वाले मनुष्य के सामने ठीक वैसी ही परिस्थितियां आ जाती हैं जैसी कि वे सोचते रहते हैं। चिंता एक प्रकार का मानसिक रोग है जिससे लाभ कुछ नहीं, हानि की ही संभावना रहती है। चिंतित और विक्षुब्ध मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता खो बैठता है। जो वह सोचता है, जो करना चाहता है, वह प्रयत्न गलत हो जाता है। उसके निर्णय अदूरदर्शिता पूर्ण और अव्यावहारिक सिद्ध होते हैं। उलझनों को सुझाने के लिए सही मार्ग तभी निकलता है जबकि सोचने वाले का मानसिक स्तर सही और शांत हो। उत्तेजित अथवा शिथिल मस्तिष्क तो ऐसे ही उपाय सोच सकता है जो उल्टे मुसीबत बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न करें। अतः सदैव विचारों को आशान्वित रखना चाहिए और उन्हें सदा रचनात्मक दिशा में लगाए रहना चाहिए। आज जो साधन और सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हीं के सहारे कल प्रगति के लिए क्या किया जा सकता है, इतना सोचना पर्याप्त है। बड़े साधन इकट्ठे होने पर बड़े कार्य करने की कल्पनाएं निरर्थक हैं। जो कार्य आज हम नहीं कर सकते, उनके लिए माथापच्ची क्यों की जाए। उद्देश्य ऊंचे रखने चाहिए। लक्ष्य बड़े से बड़ा रखा जा सकता है, पर यह न भूला दिया कि आज हम कहाँ हैं। आज की परिस्थिति को समझना और उसी आधार पर आगे बढ़ने की बात सोचना ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। भविष्य के संबंध में आशा करते ही रहना चाहिए। जो आपत्तियों और असफलता की बात ही सोचेगा, उसे कभी सुअवसर प्राप्त नहीं हो सकते। प्रगतिशील जीवन बना सकना उन्हीं के लिए संभव होता है जो प्रगतिशील ढंग से सोचते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को रचनात्मक दिशा में संलग्न किए रहते हैं। अद्भुत उपलब्धियों का आधार। किसी भी कार्य के प्रेरक होने से कार्य की सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई और उच्चता निम्नता के हेतु भी मनुष्य के अपने विचार ही है। जिस प्रकार के विचार होंगे, सृजन भी उसी प्रकार का होगा। नित्य प्रति देखने में आता है कि एक ही प्रकार का काम दो आदमी करते हैं। उनमें से एक का कार्य सुंदर, सफल और सुघड़ होता है और दूसरे का नहीं। एक से हाथ पैर, उपादान और साधनों के होते हुए भी दो मनुष्यों के एक ही कार्य में विषमता क्यों होती है? इसका एकमात्र कारण उनकी अपनी अपनी विचार प्रेरणा है। जिसके कार्य संबंधी विचार जितने सुंदर, सुघड़ और सुलझे हुए होंगे, उसका कार्य भी उसी के अनुसार उदात्त होगा है। जितने भी शिल्पों, शास्त्रों तथा साहित्य का सृजन हुआ है, वह सब विचारों की ही विभूति है। चित्रकार नित्य नए नए चित्र बनाता है, कवि नित्य नए काव्य रचता है, शिल्पकार नित्य नए मॉडल और नमूने तैयार करता है। यह सब विचारों का ही परिणाम है। कोई भी रचनाकार जो नया निर्माण करता है, वह कहीं से उतार कर नहीं लाता और न कोई अदृश्य देव ही उसकी सहायता करता है। वह यह सब नवीन रचनाएं अपने विचारों के ही बल पर करता है। विचार ही वह अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य को नित्य नवीन प्रेरणा दिया करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो कुछ दिखलाई दिया, दिखलाई देगा और दिखलाई दे रहा है, वह सब विचारों में वर्तमान रहा है, वर्तमान रहेगा और वर्तमान है। तात्पर्य यह कि समग्र त्रयकालिक कर्तृत्व मनुष्य के विचार पटल पर अंकित रहता है। विचारों के प्रतिबिंब को ही मनुष्य बाहर के संसार में उतारा करता है। जिसकी विचार स्फुरना जितनी शिक्तिमती होगी, उसकी रचना भी उतनी ही सबल एवं सफल होगी। स्थिर शक्ति जितनी उज्ज्वल होगी, बाह्य प्रतिबिंब भी उतने ही स्पष्ट और सुबोध होंगे। मनुष्य की विचार पेटी में संसार के सारे श्रेय एवं प्रिय सन्निहित रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य ने न केवल एक अपितु असंख्यों क्षेत्रों में चमत्कार कर दिखाए हैं। जिन विचारों के बल पर मनुष्य साहित्य का सृजन करता है, उन्हीं विचारों के बल पर कल कारखाने चलाता है। जिन विचारों के बल पर आत्मा और परमात्मा की खोज कर लेता है, उन्हीं विचारों के बल पर खेती करता और विविध प्रकार के धन धान्य उत्पन्न करता है, व्यापार और व्यवसाय करता है। यही नहीं, जिन विचारों की प्रेरणा से वह संत, सज्जन और महात्मा बनता है, उन्हीं विचारों की प्रेरणा से वह निर्दयी अपराधी भी बन जाता है। इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता है कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व में उसकी विचार शक्ति ही काम कर रही है। एक दिन पशुओं की भांति सारी क्रियाओं में पूर्ण पशु मनुष्य आज इस सभ्यता के उन्नति शिखर पर किस प्रकार पहुंच गया? अपनी विचार शक्ति की सहायता से। विचार शक्ति की अद्भुत उपलब्धि इस सृष्टि में केवल मानव प्राणी को ही प्राप्त हुई है। यही कारण है कि किसी दिन का पशुओं के समकक्ष मनुष्य आज महान उन्नत दशा में पहुंच गया है और अन्य सारे पशु पक्षी आज भी अपनी आदि स्थिति में उसी प्रकार रह रहे हैं। पशु पक्षी नीलों और निविड़ों में पूर्ववत ही निवास कर रहे हैं, किंतु मनुष्य बड़े बड़े नगर बनाकर अनंत सुविधाओं के साथ रह रहा है। यह सब विचार कला का ही विस्मय है। विचारों के बल पर मनुष्य न केवल पशु से मनुष्य बना है, वह मनुष्य से देवता भी बन सकता है और विचार प्रधान ऋषि मुनि महात्मा और संत मनुष्य से देवकोटि में पहुंचे हैं, पहुंचते रहेंगे। मनुष्य आज जिस उन्नत अवस्था में पहुंचा है, वह एक साथ एक दिन की घटना नहीं है। वह धीरे धीरे क्रमानुसार विचारों के परिष्कार के साथ आज इस स्थिति में पहुंच सका है। ज्यों ज्यों उसके विचार परिष्कृत, पवित्र तथा उन्नत होते गए, उसी प्रकार अपने साधनों के साथ उसका जीवन परिष्कृत तथा पुरस्कृत होता गया। व्यक्ति व्यक्ति के रूप में भी हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य जितना सभ्य, सुशील और सुसंस्कृत है, अपेक्षाकृत दूसरा उतना नहीं। समाज में जहां आज भी संतों और सज्जनों की कमी नहीं है, वहां चोर उचक्के भी पाए जाते हैं। जहां बड़े बड़े शिल्पकार और साहित्यकार मौजूद हैं, वहां गोबर गणेशों की भी कमी नहीं है। मनुष्यों की यह वैयक्तिक विषमता भी विचारों संस्कारों के अनुपात पर ही निर्भर करती है। जिसके विचार जिस अनुपात से परिमार्जित हो रहे हैं, वह उसी अनुपात से पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनता जा रहा है। विचार शक्ति के समान कोई शक्ति संसार में नहीं है। अरबों का उत्पादन करने वाले दैत्याकार कारखानों का संचालन, उद्वेलित जन समुदाय का नियंत्रण, दुर्धर्ष सेनाओं का अनुशासन और बड़े बड़े साम्राज्यों का शासन और असंख्यों जनता का नेतृत्व एक विचार बल पर ही किया जाता है। अन्यथा एक मनुष्य में एक मनुष्य की योग्य ही सीमित शक्ति रही है, वह असंख्यों का अनुशासन किस प्रकार कर सकता है? बड़े बड़े आत्ताई हुक्मरानों और सुदृढ़ साम्राज्यों को विचार बल से ही सलत दिया गया। बड़े बड़े हिंस्र पशुओं और अत्याचारियों को विचार बल से प्रभावित कर सुशील बना लिया जाता है। विचार शक्ति से बढ़कर कोई भी शक्ति संसार में नहीं है। विचारों की शक्ति अपरिमित तथा अपराजेय है। विचार एक शक्ति है, विशुद्ध विद्युत शक्ति, जो इस पर समुचित नियंत्रण कर ठीक दिशा में संचालन कर सकता है, वह बिजली की भांति इससे बड़े बड़े काम ले सकता है। किंतु जो इसको ठीक से अनुमानित नहीं कर सकता, वह उल्टा इसका शिकार बन जाता है। अपनी ही शक्ति से स्वयं नष्ट हो जाता है, अपनी ही आग में जलकर भस्म हो जाता है। इसीलिए मनीषियों ने नियंत्रित विचारों को मनुष्य का मित्र और अनियंत्रित विचारों को उसका शत्रु बतलाया है। दिव्य विचारों से उत्कृष्ट जीवन। संसार में अधिकांश व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य का अविचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु जो अपने जीवन को उत्तम विचारों के अनुरूप ढालते हैं उन्हें जीवन ध्येय की सिद्धि होती है। मनुष्य का जीवन उसके भले बुरे विचारों के अनुरूप बनता है। कर्म का प्रारंभिक स्वरूप विचार है, अतएव चरित्र और आचरण का निर्माण विचार ही करते हैं, यही मानना पड़ता है। जिसके विचार श्रेष्ठ होंगे उसके आचरण भी पवित्र होंगे। जीवन की यह पवित्रता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, ऊंचा उठाती है। अविवेकपूर्ण जीवन जीने में कोई विशेषता नहीं होती। सामान्य स्तर का जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, किंतु उस जीवन का महत्व ही क्या जो अपना लक्ष्य न प्राप्त कर सके। भले और बुरे दोनों प्रकार के विचार मनुष्य के अंतःकरण में भरे होते हैं। अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार वह जिन्हें चाहता है उन्हें जगा लेता है, जिनसे किसी प्रकार का सरोकार नहीं होता वे सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। जब मनुष्य कुविचारों का आश्रय लेता है तो उसका कलुषित अंतःकरण विकसित होता है और दीनता, निकृष्टता आदि व्याधि, दरिद्रता, दैन्यता के ज्ञानमूलक परिणाम सिनेमा के पर्दे की भांति सामने नाचने लगते हैं। पर जब वह शुभ्र विचारों में रमण करता है तो दिव्य जीवन और श्रेष्ठता का अवतरण होने लगता है, सुख समृद्धि और सफलता के मंगलमय परिणाम उपस्थित होने लगते हैं। मनुष्य का जीवन और कुछ नहीं विचारों का प्रतिबिंब मात्र है, अतः विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें लक्ष्य की ओर नियोजित करने का अर्थ है जीवन को इच्छित दिशा में चला सकने की सामर्थ्य अर्जित करना। जबकि अनियमित अनियोजित विचार का अर्थ है दिशाविहीन अनियंत्रित जीवन प्रवाह। समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की परिस्थितियों के हेतु तथा उत्थान पतन के मुख्य कारण विचारों को वश में रखना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। विचारों को उन्नत कीजिए, उनको मंगल मूलक बनाइए, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिए और वे आपको स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा देंगे। इसके विपरीत यदि आपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें कलुषित एवं कलंकित होने दिया तो आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। विचारों की चपेट से आपको संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। विचारों का तेज ही आपको ओजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में एक कुशल योद्धा की भांति विजय भी दिलाता है। इसके विपरीत आपके मुर्दा विचार आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजित करके जीवित मृत्यु के अभिशाप के हवाले कर देंगे। जिसके विचार प्रबुद्ध हैं उसकी आत्मा प्रबुद्ध है और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं है। विचारों को जागृत कीजिए, उन्हें परिष्कृत कीजिए और जीवन के हर क्षेत्र में पुरस्कृत होकर देवताओं के तुल्य ही जीवन व्यतीत करिए। विचारों की पवित्रता से ही मनुष्य का जीवन उज्ज्वल एवं उन्नत बनता है। इसके अतिरिक्त जीवन को सफल बनाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति से बड़ी शक्ति और क्या होगी। विचारों का व्यक्तित्व एवं चरित्र पर प्रभाव। भावनाओं और विचारों का प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता। बहुत समय तक प्रकृति के इस स्वाभाविक नियम पर न तो विश्वास किया गया न उपयोग। लोगों को इस विषय में जरा भी चिंता नहीं थी कि मानसिक स्थितियों का प्रभाव बाह्य स्थिति पर पड़ सकता है और आंतरिक जीवन का कोई संबंध मनुष्य के बाह्य जीवन से भी हो सकता है। दोनों को एक दूसरे से पृथक मानकर गतिविधि चलती रही। आज जो शरीर शास्त्री अथवा चिकित्सक यह मानने लगे हैं कि विचारों का शारीरिक स्थिति से बहुत घनिष्ठ संबंध है, वे पहले बहुत समय तक औषधियों जैसी जड़ वस्तुओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके प्रयोग पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए रहे। इससे वे चिकित्सा के क्षेत्र में आंतरिक स्थिति का लाभ उठाने के विषय में काफी पिछड़ गए। चिकित्सक अब धीरे धीरे इस बात का महत्व समझने और चिकित्सा में मनोदशाओं का समावेश करने लगे हैं। मानस चिकित्सा का एक शास्त्र ही अलग बनता और विकास करता चला जा रहा है। अनुभवी लोगों का विश्वास है कि यदि यह मानस चिकित्सा शास्त्र पूरी तरह विकसित और पूर्ण हो गया तो कितने ही रोगों में औषधियों के प्रयोग की आवश्यकता कम हो जाएगी। लोग अब यह मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि मनुष्य के जीवन में के अधिकांश रोगों का कारण उसके विचारों तथा मनोदशाओं में निहित रहता है। यदि उनको बदला जाए तो रोग बिना औषधियों के ही ठीक हो सकते हैं। वैज्ञानिक इसकी खोज, प्रयोग तथा परीक्षण में लगे हुए हैं। शरीर रचना के संबंध में जांच करने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य का शरीर अर्थात हड्डियां, मांस, स्नायु आदि मनुष्य की मनोदशा के अनुसार एक वर्ष में बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं और कोई कोई भाग तो एक दो सप्ताह में ही बदल जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि चिकित्सा के क्षेत्र में मानसोपचार का बहुत महत्व है। सच बात तो यह है कि आरोग्य प्राप्ति का प्रभावशाली उपाय आंतरिक स्थिति का अनुकूल प्रयोग ही है। औषधियों तथा तरह तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग कोई स्थायी लाभ नहीं करता, उनसे तो रोग के बाह्य लक्षण दब भर जाते हैं, रोग का मूल कारण नष्ट नहीं होता। जीवनी शक्ति जो आरोग्य का यथार्थ आधार है, मनोदशाओं के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। यदि रोगी के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि वह अधिक से अधिक प्रसन्न तथा उल्लसित रहने लगे तो उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, जो अपने प्रभाव से रोग को निर्मूल कर सकती है। बहुत बार देखने में आता है कि डॉक्टर रोगी के घर जाता है और उसे खूब अच्छी तरह देखभाल कर चला जाता है। कोई दवा नहीं देता तब भी रोगी अपने को दिन भर भला चंगा अनुभव करता रहता है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यही होता है कि वह बुद्धिमान डॉक्टर अपने साथ रोगी के लिए अनुकूल वातावरण लाता है और अपनी गतिविधि से ऐसा विश्वास छोड़ जाता है कि रोगी की दशा ठीक है, दवा देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इससे रोगी तथा रोगी के अभिभावकों का यह विचार दृढ़ हो जाता है कि रोग ठीक हो रहा है। विचारों का अनुकूल प्रभाव जीवन तत्व को प्रोत्साहित करता है और बीमार की तकलीफ कम हो जाती है। कुछ समय पूर्व कुछ वैज्ञानिकों ने इस सत्य का पता लगाने के लिए कि क्या मनुष्य के शरीर पर आंतरिक भावनाओं का कोई प्रभाव पड़ता है, एक परीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न प्रवृत्ति के आदमियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उनमें से कोई क्रोधी, कोई विषयी और कोई नशों का व्यसनी था। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण उन सबको पसीना आ गया। उनके पसीने की बूंदें लेकर अलग अलग विश्लेषण किया गया और वैज्ञानिकों ने उनके पसीने में मिले रासायनिक तत्वों के आधार पर उसके स्वभाव घोषित कर दिए जो बिल्कुल ठीक थे। मानसिक दशाओं अथवा विचारधाराओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसका एक उदाहरण बड़ा ही शिक्षाप्रद है। एक माता को एक दिन किसी बात पर बहुत क्रोध हो गया। 5 मिनट बाद उसने उसी आवेश की अवस्था में अपने बच्चे को स्तनपान कराया और 1 घंटे के भीतर ही बच्चे की हालत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। शव परीक्षा के परिणाम से विदित हुआ कि मानसिक क्षोभ के कारण माता का रक्त तीक्ष्ण परमाणुओं से विषैला हो गया और उसके प्रभाव से उसका दूध भी विषाक्त हो गया था, जिसे पी लेने से बच्चे की मृत्यु हो गई। यही कारण है कि शिशुपालन के नियमों में माता को परामर्श दिया गया है कि बच्चे को एकांत में तथा निश्चिंत एवं पूर्ण प्रसन्न मनोदशा में स्तनपान कराए। क्षोभ अथवा आवेग की दशा में दूध पिलाना बच्चे के स्वास्थ्य तथा संस्कारों के लिए हानिप्रद होता है। जिन माताओं के दूध पीते बच्चे रोगी, रोने वाले, चिड़चिड़े अथवा क्षीणकाय होते हैं, उसका मुख्य कारण यही रहता है कि वे माताएं स्तनपान के वांछित नियमों का पालन नहीं करती, अन्यथा वह आयु तो बच्चों के स्वस्थ तंदुरुस्त होने की होती है। इस नियम की वास्तविकता का प्रमाण कोई भी अपने अनुभव के आधार पर पा सकता है। वह दिन याद करें कि जिस दिन कोई दुर्घटना देखी हो, चाहे उस दुर्घटना का संबंध अपने से न रहा हो, तब भी उसे देखकर मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा उसके कारण शरीर सन रह गया, चलने की शक्ति कम हो गई, खड़ा रहना मुश्किल पड़ गया, शरीर में सिहरन अथवा कंपन पैदा हो गई, आंसू आ गए अथवा मुख सूख गया। उसके बाद भी जब जब उस भयंकर घटना का विचार मस्तिष्क में आता रहा, शरीर पर बहुत बार उसका प्रभाव होता रहा। मनोवैज्ञानिकों तथा चिकित्सा शास्त्रियों का कहना है कि आज रोगियों की बड़ी संख्या में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वास्तव में किसी रोग से पीड़ित हों। अन्य या बहुतायत ऐसे ही रोगियों की होती है जो किसी न किसी काल्पनिक रोग के शिकार होते हैं। आरोग्य का विचारों से बहुत बड़ा संबंध होता है। जो व्यक्ति अपने प्रति रोगी होने, निर्बल और असमर्थ होने का भाव रखते हैं और सोचते रहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उन्हें आंख, नाक, कान, पेट, पीठ का कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। बहुत कुछ उपाय करने पर भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाते। ऐसे अशुभ विचारों को धारण करने वाले वास्तव में कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाते। यदि उनको कोई रोग नहीं भी होता है तो भी उनकी इस अशुभ विचार साधना के फलस्वरूप कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और वे वास्तव में रोगी बन जाते। इसके विपरीत जो स्वास्थ्य संबंधी सद्विचारों की साधना करते हैं, वे रोगी होने पर भी शीघ्र चंगे हो जाया करते हैं। रोगी इस प्रकार सोचने के अभ्यस्त होते हैं, वे उपचार के अभाव में भी स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। मेरा रोग साधारण है, मेरा उपचार ठीक ठीक पर्याप्त ढंग से हो रहा है, दिन दिन मेरा रोग घटता जाता है और मैं अपने अंदर एक स्फूर्ति, चेतना और आरोग्य की तरंग अनुभव करता हूँ। मेरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाने में अब ज्यादा देर नहीं है। इसी प्रकार जो निरोग व्यक्ति भूलकर भी रोगों की शंका नहीं करता और अपने स्वास्थ्य से प्रसन्न रहता है, जो कुछ खाने को मिलता है खाता और ईश्वर को धन्यवाद देता है, वह न केवल आजीवन निरोग ही रहता है बल्कि दिन दिन उसकी शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है। जीवन की उन्नति और विकास के संबंध में भी यही बात लागू होती है। जो व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहता है कि उसके पास साधनों का अभाव है, उसकी शक्ति सामर्थ्य और योग्यता कम है, उसे अपने पर विश्वास नहीं है, संसार में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, विपरीत परिस्थितियां सदैव ही उसे घेरे रहती हैं। वह निराशावादी व्यक्ति जीवन में जरा भी उन्नति नहीं कर सकता। फिर चाहे उसे कुबेर का कोष ही क्यों न दे दिया जाए और संसार के सारे अवसर ही क्यों न उसके लिए सुरक्षित कर दिए जाए। इसके विपरीत जो आत्मविश्वास, उत्साह, साहस और पुरुषार्थ भावना से भरे विचार रखता है, सोचता है कि उसकी शक्ति सब कुछ कर सकने में समर्थ है, उसकी योग्यता इस योग्य है कि वह अपने लायक हर काम कर सकता है, उसमें परिश्रम और पुरुषार्थ के प्रति लगन है, उसे संसार में किसी की सहायता के लिए बैठे नहीं रहना है, वह स्वयं ही अपना मार्ग बनाएगा और स्वयं ही अपने आधार पर उस पर अग्रसर होगा। ऐसा आत्मविश्वासी और आशावादी व्यक्ति अभाव और प्रतिकूलता में भी आगे बढ़ जाता है। विचारशील लोग दीर्घायु होते हैं। डॉक्टर एफ ई विल्स, डॉक्टर लेलार्ड कार्डल, रॉबर्ट मैक कैरिसन आदि अनेक स्वास्थ्य शास्त्रियों ने दीर्घायु के रहस्य ढूंढे। प्राकृतिक जीवन, संतुलित और शाकाहार, परिश्रमशील जीवन, संयमित जीवन, शतायुष्य के लिए यही सब नियम माने गए हैं, लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति देखने में आए जो इन नियमों की अवहेलना करके रोगी और बीमार रहकर भी 100 वर्ष की आयु से अधिक जिए। इससे इन वैज्ञानिकों को भी भ्रम बना रहा कि दीर्घायुष्य का रहस्य कहीं और छिपा हुआ है। इसके लिए उसकी खोज निरंतर जारी रही। अमेरिका के दो वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रानिक और डॉक्टर बिरेन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घ जीवन का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क एवं ज्ञान से है। उनका कहना है कि अनुसंधान के समय 92 और इस आयु के ऊपर के जितने भी लोग मिले वह सब अधिकतर पढ़ने वाले थे। आयु बढ़ने के साथ साथ जिनकी ज्ञान वृद्धि भी होती है वे दीर्घजीवी होते हैं, पर 50 की आयु पार करने के बाद जो पढ़ना बंद कर देते हैं, जिनका ज्ञान नष्ट होने लगता है, जल्दी ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना पढ़ता है उतना ही उसमें चिंतन करने की शक्ति आती है। व्यक्ति जितना सोचता विचारता रहता है उसका नाड़ी मंडल उतना ही तीव्र रहता है। हम यह सोचते हैं कि देखने का काम हमारी आंखें करती हैं, सुनने का काम कान, सांस लेने का काम फेफड़े, पेट भोजन पचाने और हृदय रक्त परिभ्रमण का काम करता है। विभिन्न अंग अपना अपना काम करके शरीर की गतिविधि चलाते हैं, पर यह हमारी भूल है। सही बात यह है कि नाड़ी मंडल की सक्रियता से ही शरीर के सब अवयव क्रियाशील होते हैं, इसलिए मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा शरीर उतना ही क्रियाशील होगा। मस्तिष्क के मंद पड़ने का अर्थ है शरीर के अंग प्रत्यंगों की शिथिलता, और तब मनुष्य की मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। इससे जीवित रहने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। ज्ञान की धाराएं जितनी तीव्र होंगी उतनी ही आयु भी लंबी होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हेल्थ का शाब्दिक अर्थ शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से पुष्ट होना लिखा है। अर्थात मस्तिष्क जितना पुष्ट रहता है शरीर उतना ही पुष्ट होगा, और मस्तिष्क के पुष्ट होने का एक ही उपाय है ज्ञान वृद्धि। शास्त्रकारों ने भी ज्ञान वृद्धि को ही अमरता का साधना कहा है। भारतीय ऋषि मुनियों का दीर्घ जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी ऋषि दीर्घजीवी हुए हैं, उनके जीवनक्रम में ज्ञानार्जन ही सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसके लिए तो उन्होंने वैभव विलास का जीवन तक ठुकरा दिया था। वे निरंतर अध्ययन में लगे रहते थे जिससे उनका नाड़ी संस्थान कभी शिथिल न होने पाता था, और वे दो दो चार चार सौ वर्ष तक हंसते खेलते जीते रहते थे। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास आदि की आयु कई कई सौ वर्ष की थी। जामवंत की कथा लगती कपोल कल्पित है, पर अमेरिकी वैज्ञानिकों का कथन सत्य है तो उस कल्पना को भी निराधार नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं जामवंत बड़ा विद्वान था, वेद उपनिषद उसे कंठस्थ थे, वह निरंतर पढ़ाई करता था और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उसने लंबा जीवन प्राप्त किया था। वामन अवतार के समय वह युवक था। रामचंद्र का अवतार हुआ तब यद्यपि उसका शरीर काफी वृद्ध हो गया था, पर उसने रावण के साथ युद्ध में भाग लिया था। उसी जामवंत के कृष्ण अवतार में भी उपस्थित होने का वर्णन आता है। दूर की क्यों कहें, पिंटर मार्फेस ने ही अपने भारत के इतिहास में नुमिज़देको हुआ नामक एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो सन 1566 में 370 की आयु में मरा था। इस व्यक्ति के बारे में इतिहासकार ने लिखा है कि मृत्यु के समय भी उसे अतीत की घटनाएं इतनी स्पष्ट याद थी जैसे अभी वह कल की बातें हों। यह व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे से कम नहीं पढ़ता था। डॉक्टर जीरो लेलार्ड कार्डेल लिखते हैं, मैंने शिकागो निवासिनी श्रीमती ल्यूसी जे जीरो से भेंट की, तब उनकी आयु 108 वर्ष की थी। मैं जब उनके पास गया तब वे पढ़ रही थी। बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, वे प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ती हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शून्य आत्माराम और अन्य कई वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि योग से अपने हृदय और नाड़ी आदि की गति पर नियंत्रण रखकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। यह क्रिया मस्तिष्क से विचारों की तरंगे उत्पन्न करके की जाती है। अध्ययनशील व्यक्तियों में यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसलिए यदि शरीर देखने में दुबला है तो भी उसमें आरोग्य और दीर्घ जीवन की संभावनाएं अधिक पाई जाएंगी। मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से शरीर बचा नहीं रह सकता। इससे साफ हो जाता है कि मस्तिष्क ही शरीर में जीवन का मुख्य आधार है। उसे जितना स्वस्थ और परिपुष्ट रखा जा सके मनुष्य उतना ही दीर्घजीवी हो सकता है। उक्त वैज्ञानिकों की यदि यह सम्मति सही है तो ऋषियों के दीर्घ जीवन का मूल कारण उनकी ज्ञान वृद्धि ही मानी जाएगी और आज के व्यस्त और दूषित वातावरण वाले युग में सबसे महत्वपूर्ण साधन भी यही होगा कि हम अपने दैनिक कार्यक्रमों में स्वाध्याय को निश्चित रूप से जोड़कर रखें और अपने जीवन की अवधि लंबी करते चलें। जीवन में बालक से लेकर बूढ़े तक सभी प्रसन्नता चाहते हैं और उसे पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि एक स्थायी प्रसन्नता जीवन का चरम लक्ष्य भी है। यदि मनुष्य जीवन में प्रसन्नता का नितांत अभाव हो जाए तो उसका कुछ समय चल सकना भी असंभव हो जाए। यह बात सत्य है कि मानव जीवन में अनुपात दैहिक क्लेश का ही अधिक देखने में आता है, तब भी लोग शौक से जी रहे हैं। इसका कारण यही है कि बीच बीच में उन्हें प्रसन्नता भी प्राप्त होती रहती है और उसके लिए उन्हें नित्य नई आशा बनी रहती है। प्रसन्नता जीवन के लिए संजीवनी तत्व है, मनुष्य को उसे प्राप्त करना ही चाहिए। प्रसन्नावस्था में ही मनुष्य अपना तथा समाज का भला कर सकता है, विषणावस्था में नहीं। प्रसन्नता वांछनीय भी है और लोग उसे पाने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करते रहते हैं, किंतु फिर भी कोई उसे अपेक्षित अर्थ में पाता दिखाई नहीं देता। क्या धनवान, क्या बालक और क्या वृद्ध किसी से भी पूछ देखिए, क्या आप जीवन में पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न हैं? उत्तर अधिकतर नकारात्मक ही मिलेगा। उसका पूरक दूसरा प्रश्न भी कर देखिए, तो क्या आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते? 90% से अधिक उत्तर यही मिलेगा कि प्रयत्न तो अधिक करते हैं किंतु प्रसन्नता मिल ही नहीं पाती। निःसंदेह मनुष्य की यह असफलता आश्चर्य ही नहीं, दुख का विषय है। कितने खेद का विषय है कि आदमी किसी एक विषय अथवा वस्तु के लिए प्रयत्न करे और उसको प्राप्त न कर सके। ऐसा भी नहीं कि कोई उसे प्राप्त करने में कम श्रम करता हो अथवा प्रयत्नों में कोताही रखता हो। मनुष्य संपूर्ण अनुक्षण एकमात्र प्रसन्नता प्राप्त करने में ही तत्पर एवं व्यस्त रहता है। वह सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते जो कुछ भी अच्छा बुरा करता है, सब प्रसन्नता प्राप्त करने के मंतव्य से। किंतु खेद है कि वह उसे उचित रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। प्रसन्नता का वास्तविक स्वरूप। इस स्थिति को देखते हुए तो यही समझ आता है कि या तो मनुष्य प्रसन्नता के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता अथवा वह अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए जिस दिशा में प्रयत्न करता है वह ही गलत है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। लोगों में अधिकतर एक सामान्य धारणा यह रहा करती है कि यदि उनके पास अधिक पैसा हो, साधन सुविधाएं हो तो वे प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसी धारणाओं वाले लोग सदैव साधन सुविधाओं के लिए रोते रिड़ियाते रहने के बजाय एक बात दृष्टि उठाकर उन लोगों की ओर क्यों नहीं देखते कि प्रचुरता से परिपूर्ण होने पर भी क्या वे सुखी हैं, प्रसन्न और संतुष्ट हैं। यदि धन दौलत तथा साधन सुविधाएं ही प्रसन्नता की हेतु होती तो संसार का हर धनवान अधिक से अधिक सुखी और संतुष्ट होता, किंतु ऐसा कहाँ है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वैभव और विभूति वास्तविक प्रसन्नता का कारण नहीं है। प्रसन्नता प्राप्ति का हेतु मानकर इन भौतिक विभूतियों के लिए रोते मरते रहना बुद्धिमानी नहीं है। बल, बुद्धि और विद्या को भी प्रसन्नता का हेतु मानने की एक सभ्य प्रथा है, किंतु यह ऐश्वर्य भी वास्तविक प्रसन्नता का वाहन नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर शिक्षित प्रसन्न दिखाई देता और हर अशिक्षित अप्रसन्न। ऐसा भी देखने में नहीं आता। जिस प्रकार अनेक धनवान अप्रसन्न और निर्धन प्रसन्न देखे जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक विद्वान क्षुब्ध तथा कम पढ़े लिखे लोग प्रसन्न मिल सकते हैं। बड़े बड़े बलवान आहें भरते और साधारण सामर्थ्य वाले व्यक्ति हंसी खुशी से जीवन बिताते मिल सकते हैं। इस प्रकार विचार करने से पता चलता है कि वास्तविक प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको किसी शक्ति अथवा साधन के बल पर प्राप्त किया जा सके। साधनों की झोली फैलाकर प्रसन्नता की तलाश में दौड़ने वाले कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, और वास्तविक बात तो यह है कि जो जितना अधिक प्रसन्नता के पीछे दौड़ते हैं वे उतने ही अधिक निराश होते हैं। उनका यह निरर्थक श्रम उस अबोध हरिण की तरह ही शोचनीय होता है जो पानी के भ्रम में मरु मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं, अथवा बालक की तरह कौतुकपूर्ण है जो आगे पड़ी हुई अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ता है। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका पीछा करने की जरूरत है, वह तो अवसर आने पर स्वयं ही आकर मनोमंदिर में हंसने लगती है। उसके आने का एक अवसर तो यही होता है जब हम उसको पाने के लिए कम से कम लालायित, व्यग्र और चिंतित होते हैं। प्रसन्नता प्राप्ति का मुख्य रहस्य यह है कि मनुष्य अपने लिए सुख की कामना छोड़कर अपना जीवन दूसरों की प्रसन्नता में नियोजित करे। दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयत्न में जो कष्ट प्राप्त होता है वह भी प्रसन्नता ही देता है। छोटा मोटा कष्ट तो दूर, देशभक्त तथा अनेकों परोपकारियों ने अपने प्राण देने पर भी अनिर्वचनीय प्रसन्नता प्राप्त की है। इतिहास ऐसे बलिदानियों से भरा पड़ा है कि जिस समय उनको मृत्युवेदी पर प्राण हरण के लिए लाया गया उस समय उनके मुख पर जो आह्लाद, जो तेज, जो मुस्कान और जो प्रसन्नता देखी गई वह काल के अनंत पृष्ठ पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन की किसी न किसी ऐसी घटना का स्मरण करके समझ सकता है कि जब उसने कोई परोपकार का काम किया तब उसके हृदय में प्रसन्नता की कितनी गहरी अनुभूति हुई थी। जिस दिन यह सोचने के बजाय कि आज हम अपने लिए अधिक से अधिक प्रसन्नता संचय करेंगे, यदि यह सोचकर दिन का काम प्रारंभ किया जाए कि आज हम दूसरों के लिए अधिक प्रसन्नता संचय करेंगे, तो वह दिन आपके लिए बहुत अधिक प्रसन्नता का दिन होगा। साधारण मनोरंजन कार्यों तथा व्यवहारों में इस रहस्य को आए दिन देखा जा सकता है कि जो काम दूसरों को प्रसन्न करने वाले होते हैं अथवा जिन कामों से हम दूसरों को प्रसन्न कर पाते हैं वे ही काम हमें अधिक से अधिक प्रसन्न किया करते हैं। एक खिलाड़ी गेंद खेलता है और विपक्षी पर एक गोल कर देता है तो उसे अपनी सफलता पर प्रसन्नता होती है, किंतु तभी जब उसके साथी भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी कारण से उसकी यह सफलता दर्शकों अथवा साथियों को प्रसन्न न कर पाए तो उसे स्वयं भी प्रसन्नता न होगी। एक शिल्पी भवन अथवा मंदिर बनाता है, यद्यपि वह उसका नहीं होता तथापि वह इसलिए प्रसन्न होता है कि उसका यह काम दूसरों को प्रसन्न कर सकता है। इसी प्रकार कोई चित्रकार, कलाकार अथवा कवि कोई रचना करता है तो उसे प्रसन्नता होती है, उसे अपनी कृति अच्छी लगती है, किंतु उसकी प्रसन्नता में वास्तविकता तभी आती है जब दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। संयोगवश यदि उसका सृजन अन्य किसी की प्रसन्नता का संपादन न कर सके तो अपनी होते हुए भी कला में कोई रुचि न रहेगी, वह उसे बेकार समझेगा और उसकी प्रसन्नता जाती रहेगी। वास्तविकता प्रसन्नता का मूल रहस्य दूसरों की प्रसन्नता में निहित है। जो परोपकारी व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए जीते हैं उनके कार्य औरों की सेवा रूप होते हैं। वे अपने जीवन में साधन शून्य रहने पर भी प्रसन्न, संतुष्ट एवं सुखी रहते हैं। जिसकी जीवन में वास्तविक प्रसन्नता की जिज्ञासा हो वह अपने जीवन को यज्ञमय बनाए, नित्य निरंतर दूसरों का हित साधन करे जिससे कि वह अपनी वांछित वस्तु प्रसन्नता को नित्य निरंतर पाता रहे। विचार का चरित्र से घनिष्ठ संबंध होता है। जिसके विचार जिस स्तर के होंगे उसका चरित्र भी उसी कोटि का होगा। जिसके विचार क्रोध प्रधान होंगे वह चरित्र से भी लड़ाकू और झगड़ालू होगा। जिसके विचार कामुक और स्त्रैण होंगे उसका चरित्र वासनाओं और विषय भोग की जीती जागती तस्वीर ही मिलेगा। विचारों के अनुरूप ही चरित्र का निर्माण होता है, यह प्रकृति का अटल नियम है। चरित्र मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, उससे ही सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वास और श्रद्धा की प्राप्ति होती है। वही मानसिक और शारीरिक शक्ति का मूल आधार है। चरित्र की उच्चता ही उच्च जीवन का मार्ग निर्धारित करती है और उस पर चल सकने की क्षमता दिया करती है। निम्नाचरण के व्यक्ति समाज में नीची दृष्टि से ही देखे जाते हैं। उनकी गतिविधि अधिकतर समाज विरोधी ही रहती है। अनुशासन और मर्यादा जो कि वैयक्तिक से लेकर राष्ट्रीय जीवन की दृढ़ता की आधारशिला है, निम्नाचरण व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखती है। आचरणहीन व्यक्ति और एक साधारण पशु के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जिसने अपनी यह बहुमूल्य संपत्ति खो दी उसने मानो सब कुछ खो दिया। सब कुछ पा लेने पर भी चरित्र का अभाव मनुष्य को आजीवन दरिद्री ही बनाए रखता है। मनुष्यों से भरी इस दुनिया में अधिकांश संख्या ऐसों की ही है जिन्हें एक तरह से अर्ध मनुष्य ही कहा जा सकता है। वे कुछ ही प्रवृत्तियों और कार्यों में पशुओं से भिन्न होते हैं, अन्यथा वे एक प्रकार से मानव पशु ही होते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य बड़े ही सभ्य, शिष्ट और शालीन होते हैं। उनकी दुनिया सुंदर और कलाप्रिय होती है। इसके आगे भी एक श्रेणी चली गई है जिनको महापुरुष, ऋषि मुनि और देवता कह सकते हैं। समान हाथ पैर और मुंह, नाक, कान के होते हुए भी और एक ही वातावरण में रहते मनुष्यों में यह अंतर क्यों दिखलाई देता है? इसका आधारभूत कारण विचार ही माने गए हैं। जिस मनुष्य के विचार जिस अनुपात में जितने अधिक विकसित होते चले जाते हैं उसका स्तर पशुता से श्रेष्ठता की ओर उठता चला जाता है। असुरत्व, पशुत्व, ऋषित्व अथवा देवत्व और कुछ नहीं, विचारों के ही स्तरों के नाम हैं। यह विचार शक्ति ही है जो मनुष्य को देवता अथवा राक्षस बना सकती है। विचार ही चरित्र निर्माण करते हैं। जो विचार देर तक मस्तिष्क में बना रहता है वह अपना एक स्थायी स्थान बना लेता है। यही स्थायी विचार मनुष्य का संस्कार बन जाता है। संस्कारों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। सामान्य विचार कार्यान्वित करने के लिए मनुष्य को स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु संस्कार उसको यंत्रवत संचालित कर देता है। शरीर यंत्र जिसके द्वारा सारी क्रियाएं संपादित होती हैं, सामान्य विचारों के अधीन नहीं होता। इसके विपरीत इस पर संस्कारों का पूर्ण आधिपत्य होता है। न चाहते हुए भी शरीर यंत्र संस्कारों की प्रेरणा से हठात सक्रिय हो उठता है और तदनुसार आचरण प्रतिपादित करता है। मानव जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। इन्हें यदि मानव जीवन का अधिष्ठाता और आचरण का प्रेरक कह दिया जाए तब भी असंगत न होगा। केवल विचार मात्र ही मानव चरित्र के प्रकाशक प्रतीत नहीं होते, मनुष्य का चरित्र विचार और आचार दोनों से मिलकर बनता है। संसार में बहुत से ऐसे लोग पाए जा सकते हैं जिनके विचार बड़े ही उदात्त, महान और आदर्शपूर्ण होते हैं, किंतु उनकी क्रियाएं उसके अनुरूप नहीं होती। विचार पवित्र हों और कर्म पावन तो यह सच्चरित्रता नहीं हुई। इसी प्रकार बहुत से लोग ऊपर से बड़े ही सत्यवादी, आदर्शवादी और धर्म कर्म वाले दिखते हैं, किंतु उनके भीतर कलुषपूर्ण विचारधारा बहती रहती है। ऐसे व्यक्ति भी सच्चे चरित्र वाले नहीं माने जा सकते। सच्चा चरित्रवान वही माना जाएगा और वास्तव में वही होता भी है जो विचार और आचार दोनों को समान रूप से उच्च और पुनीत रखकर चलता है। चरित्र मनुष्य की सर्वोपरि संपत्ति है। विचारकों का कहना है, धन चला गया, कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य चला गया, कुछ चला गया। किंतु यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। विचारकों का यह कथन शत प्रतिशत भाव से अक्षरशः सत्य है। गया हुआ धन वापस आ जाता है। नित्य प्रति संसार में लोग धनी से निर्धन और निर्धन से धनवान होते रहते हैं। धूप छांव जैसी धन अथवा अधन की इस स्थिति का जरा भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार रोगों, व्यक्तियों और चिंताओं के प्रभाव से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता और तदनुकूल उपायों द्वारा बनता रहता है। नित्य प्रति अस्वास्थ्य के बाद लोगों को स्वस्थ होते देखे जा सकता है, किंतु गया हुआ चरित्र दोबारा वापस नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं कि गिरे हुए चरित्र के लोग अपना परिष्कार नहीं कर सकते। दुष्चरित्र व्यक्ति भी सदाचार, सद्विचार और सत्संग द्वारा चरित्रवान बन सकता है, तथापि वह अपना वह असंदिग्ध विश्वास नहीं पा पाता चरित्रहीनता के कारण जिसे वह खो चुका होता है। समाज जिसके ऊपर विश्वास नहीं करता, लोग जिसे संदेह और शंका की दृष्टि से देखते हों, चरित्रवान होने पर भी उसके चरित्र का कोई मूल्य महत्व नहीं है। वह अपनी निज की दृष्टि में भले ही चरित्रवान बना रहे, यथार्थ में चरित्रवान वही है जो अपने समाज, अपनी आत्मा और अपने परमात्मा की दृष्टि में समान रूप से असंदिग्ध और संदेह रहित हो। इस प्रकार की मान्य और निःशंक चरित्रमत्ता ही वह आध्यात्मिक स्थिति है जिसके आधार पर सम्मान, सुख, सफलता और आत्मशांति का लाभ होता है। मनुष्य को अपनी चारित्रिक महानता की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। यदि चरित्र चला गया तो मानो मानव जीवन का सब कुछ चला गया। धन और स्वास्थ्य भी मानव जीवन की संपत्तियां हैं, इसमें संदेह नहीं, किंतु चरित्र की तुलना में यह नगण्य है। चरित्र के आधार पर धन और स्वास्थ्य तो पाए जा सकते हैं, किंतु धन और स्वास्थ्य के आधार पर चरित्र नहीं पाया जा सकता। यदि चरित्र सुरक्षित है, समाज में विश्वास बना है, तो मनुष्य अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर पुनः धन की प्राप्ति कर सकता है। चरित्र में यदि दृढ़ता है, सन्मार्ग का त्याग नहीं किया गया है, तो उसके आधार पर संयम, नियम और आचार विचार के द्वारा खोया हुआ स्वास्थ्य फिर वापस बुलाया जा सकता है। किंतु यदि चारित्रिक विशेषता का ह्रास हो गया है तो इनमें से एक की भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए चरित्र का महत्व धन और स्वास्थ्य दोनों से ऊपर है। इसीलिए विद्वान विचारकों ने यह घोषणा की है कि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, किंतु यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मनुष्य के चरित्र का निर्माण संस्कारों के आधार पर होता है। मनुष्य जिस प्रकार के संस्कार संचय करता रहता है, उसी प्रकार उसका चरित्र ढलता रहता है। अस्तु अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए मनुष्य को अपने संस्कार का निर्माण करना चाहिए। संस्कार मनुष्य के उन विचारों के ही प्रौढ़ रूप होते हैं जो दीर्घकाल तक रहने से मस्तिष्क में अपनी स्थायी स्थान बना लेता है। यदि सद्विचारों को अपनाकर उनका ही चिंतन और मनन किया जाता रहे तो मनुष्य के संस्कार शुभ और सुंदर बनेंगे। इसके विपरीत यदि असद विचारों को ग्रहण कर मस्तिष्क में बसाया और मनन किया जाएगा तो संस्कार के रूप में कूड़ा करकट ही इकट्ठा होता जाएगा। विचारों का निवास चेतन मस्तिष्क और संस्कारों का निवास अवचेतन मस्तिष्क में रहता है। चेतन मस्तिष्क प्रत्यक्ष और अवचेतन मस्तिष्क अप्रत्यक्ष अथवा गुप्त होता है। यही कारण है कि कभी कभी विचारों के विपरीत क्रिया हो जाया करती है। मनुष्य देखता है कि उसके विचार अच्छे और सदाशयी हैं, तब भी उसकी क्रियाएं उसके विपरीत हो जाया करती हैं। इस रहस्य को न समझ सकने के कारण कभी कभी वह बड़ा व्यग्र होने लगता है। विचारों के विपरीत कार्य हो जाने का रहस्य यही होता है कि मनुष्य की क्रिया प्रवृत्ति पर संस्कारों का प्रभाव रहता है और गुप्त मन में छिपे रहने से उनका पता नहीं चल पाता। संस्कार विचारों को व्यक्त कर अपने अनुसार मनुष्य की क्रियाएं प्रेरित कर दिया करते हैं। जिस प्रकार पानी के ऊपर दिखने वाले छोटे से कमल पुष्प का मूल पानी के तेल में कीचड़ में छिपा रहने से नहीं दिखता, उसी प्रकार परिणाम रूप क्रिया का मूल संस्कार अवचेतन मन में छिपा होने से नहीं दिखता। कोई कोई विचार ही